भट्टी में सभी आए हैं। ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त के धारणा स्वरूप बनने के लिए उसमें तीन बातों की आवश्यकता थी, कौन सी? त्याग, तपस्या और सेवा। हर कर्म में त्याग और तपस्या दिखाई दे तभी सेवा में सफलता पा सकते हैं। तो कल ये पढ़ा था, आज जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। जितना ही नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानवान, ज्ञानी। पावरफुल अर्थात शक्तिशाली और सक्सेसफुल, सफलता मूर्त। नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देगी कि उसका एक एक शब्द पावरफुल होगा और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। अगर यह दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती है तो समझना चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है, अभी बने नहीं है। जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है, तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति, प्रत्यक्ष प्राप्ति होने का अनुभव भी अभी करना है। ऐसे नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी है, नहीं, ऐसे नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी है, नहीं, कब होनी है? अभी। क्या प्राप्ति होने वाली है नॉलेज से? तो वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता का अनुभव। अगर नॉलेज है तो सेवा में और पुरुषार्थ में सफल। सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हो। तो नॉलेज का मापदंड सफलता। तो भट्टी में आए हो चेक करने और कराने के लिए कि कहां तक नॉलेजफुल बने हैं। कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे, इतना त्याग सीखना है। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे व स्मृति में न आए, ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है। जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुनी चाहे तमोगुनी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो, ऐसे सर्व आत्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है। तो अब समझा क्या क्या सीखना है, तपस्या क्या सीखनी है और सेवा भी कहाँ तक करनी है, इसकी महीनता का अनुभव करना है। हर पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हो। जैसे अभी सभी के सामने ब्रह्मा कुमार प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, दूर से ही जान जाते हैं कि यह ब्रह्मा कुमार है। अब ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार दूर से ही दिखाई पड़े, ऐसे बनकर जाना है। वह तब होगा जब मनन और मगन दोनों का अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल नशे में रहने वाले के नयन चैन चलन दिखाई देती है कि यह नशे में है, ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई पड़े, चेहरा ही आपका परिचय दे। जैसे कोई के पास मिलने जाते हैं तो परिचय के लिए क्या देते हैं? विजिटिंग कार्ड। तो यहाँ विजिटिंग कार्ड क्या है? जैसे कोई के पास जाते हैं तो परिचय के लिए अपना कार्ड देते हैं, इसी रीति से आपका चेहरा परिचय कार्ड का कर्तव्य करे। समझा ध्रुव भाई? तो क्या सुना? जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। नॉलेजफुल ज्ञानी, ज्ञानवान, ज्ञानी तो आत्मा, जितना नॉलेजफुल होते हो उतना ही पावरफुल, उतना ही शक्तिशाली और सक्सेसफुल होना चाहिए। नॉलेज की निशानी यह दिखाई देनी, यह दिखाई देगी कि उनका एक एक शब्द कैसा होगा, पावरफुल होगा, और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। अगर यह दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती है, अगर यह दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती है तो समझना चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है। जबकि आजकल आत्मा द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव भी अभी करना है। ऐसे नहीं समझना है कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होगी, नहीं, वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति है पुरुषार्थ में सफलता और सेवा में सफलता। तो सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हो। सफलता नहीं अगर हो रही है किसमें, सेवा में या पुरुषार्थ में, अगर पुरुषार्थ में सफलता नहीं हो रही है, अनुभव नहीं हो रहे, इसका अर्थ नॉलेजफुल अभी बने नहीं है, नॉलेजफुल अभी बनना बाकी है। तो भट्टी में आए हो चेक करने और कराने के लिए कि कहां तक नॉलेजफुल बने हैं। आज की मुरली में ज्ञानी तो आत्मा के तीन लक्षण दिए हैं, कौन से, वरदान में गीता बेन, ज्ञानी तो आत्मा अर्थात कौन सुनकर आया है, ज्ञानी तो आत्मा के तीन लक्षण हैं और चार लक्षण नहीं है, तीन होने चाहिए और चार नहीं होने चाहिए, कौन कौन से हैं तीन, आशीष भाई सुनकर आए हैं, कौन कौन सुनकर आए, उमा बहन सुनकर आए, और कौन कौन सुनकर आया, इधर चिमन भाई जी भी सुनकर आए हैं, तो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात पहला ज्ञान में समाये हुए, दूसरा ज्ञान के सागर में समाये हुए, और तीसरा क्योंकि सर्व प्राप्ति स्वरूप है इसलिए इच्छा मात्र अविद्या। ये तीन ज्ञानी तो आत्माओं के लक्षण है। सबसे पहला तो ज्ञान सागर में ही समाये हुए हैं, अर्थात जो ज्ञान का सागर है, जो बाप है उसमें समाये हुए हैं। दूसरा इस ज्ञान में समाये हुए हैं, समाये हुए अर्थात डूबे हुए, उसमें लीन, उसमें डूबे हुए, उसमें समाये हुए। तीसरा क्योंकि सर्व प्राप्ति स्वरूप है इनके लिए उसकी उनकी जो स्टेज है वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज है। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा था, जो पाना था सो पा लिया, जो देखना था सो देख लिया, वारे मैं, वारे भाग्य और वारे मैं भाग्य विधाता, ऐसी मन की सूक्ष्म आवाज उनको सुनाई देगी। कल वरदान था ना, किसको सुनाई देगी,
जो पा लिया जिन्होंने देख लिया,
खुद ही की आवाज खुद को सुनाई दे। कितनी अद्भुत बात बाबा ने कही कल वरदान में, खुद ही की आवाज, मन की सूक्ष्म आवाज उनको खुद ही सुनाई दे रही है। पाना था सो पा लिया, देखना था सो देख लिया, करना था सो कर लिया, सुनना था सो सुन लिया, खाना था सो खा लिया, पीना था सो पी लिया। ऐसी स्टेज उलझनों से मुक्त, जो स्वयं उलझनों से मुक्त है वो औरों को भी उलझनों से मुक्त करेंगे। छोटे छोटी बातों में नहीं जाएंगे, मास्टर रचयिता और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज होगी। तो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात ज्ञान के सागर में समाये हुए एक, दूसरा ज्ञान में समाये हुए, तीसरा क्योंकि सर्व प्राप्ति स्वरूप है इसके लिए इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज। ये तीन चीजें होनी चाहिए और चार चीजें होनी नहीं चाहिए, वो कौन सी चार चीजें?
ज्ञान की भी इच्छा नहीं।
चार चीजें नहीं होनी चाहिए। कौन सी चार चीजें नहीं होनी चाहिए? एक तो आपकी पॉइंट है पावरफुल वाली 69 की मुरली की। चार चीजें कौन सी नहीं होनी चाहिए मंजू बहन ज्ञानी तो आत्माओं में?
अब ठीक बता सकते हो।
जल्दी बैठो। मुहूर्त निकला जा रहा है। मान शान से परे, नाम मान शान दो नंबर है। नाम मान शान के लेवता नहीं, मांगता नहीं होंगे वो, उन्हें ना नाम की इच्छा ना मान की। नाम मान और शान, हमारा नाम हो जाए, हमारा मान हो जाए और हमारा हमारी शान हमको मिले, ये सब इच्छाएं उनमें नहीं है। इस चीज के वो मांगता नहीं है, ये एक सेकंड पॉइंट। और क्या क्यों, क्या क्यों के लिए पुकारने वाले और चिल्लाने वाले नहीं है वो। ये क्यों, ये क्या, चिल्लाने वाले और पुकारने वाले नहीं है, ये है तीसरा, पहला और चौथा बाकी है। कौन सा है चौथा? 69 की मुरली से है। खौफनाक कौन होते हैं? अंदर एक और बाहर दूसरे, जो है वो खौफनाक होते हैं, ये चौथा। अब पहला कौन सा है वो सोचो, तब तक आगे पढ़ते हैं।
सोचना क्या, सुनना है हमको।
जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं, उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। संसार में भी नॉलेज प्राप्त करते हैं तो अल्पकाल की सफलता होती है। ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान किसे कहा जाएगा? एक है जानकारी, एक है अनुभव, एक है बौद्धिक बोध, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, संसार का, ये ऐसा ऐसा है, यह है, इसे कहा जाता है जानकारी। परंतु ज्ञान जो है वो जानकारी नहीं है। ज्ञान अर्थात अनुभव, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात सत्य का बोध, ज्ञान अर्थात सत्य की प्रतीति, ज्ञान अर्थात जीवंत सत्य। वो जो संसार जिसे ज्ञान करता है वो तो मृत है। मृत तथ्यों का संग्रह जो है वो है जानकारी। तो ये ज्ञानी बनना अर्थात मृत तथ्यों का संग्रह करना नहीं है, परंतु जीवंत सत्य का बोध होना, जीवंत सत्य की प्रतीति होना, जीवंत सत्य की समझ अनुभूति अर्थात ज्ञान। वो जो ज्ञान है वो बाहर से लिया जाता है, संसार जिसे ज्ञान कहता है। ये जो ज्ञान है ये बाहर से नहीं लिया जाता है, ये इधर ही है, ये अंदर से आता है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। विवेकानंद ने शिक्षा की परिभाषा दी है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच इज ऑलरेडी इन द मैन। वो संपूर्णता आत्मा में निहित है, उसको उघाड़ना, उसको बाहर लाना, रिवील करना, एक्सपोज करना, प्रत्यक्ष करना, ये है शिक्षा। उसी तरह रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी विच इज ऑलरेडी इन मैन। धर्म जो है उसकी परिभाषा है कि वह दिव्यता जो आत्मा में पहले से ही है, निहित है, उसको केवल बाहर लाना है, उसको केवल प्रत्यक्ष करना है, उसको उघाड़ना है, एक्सपोज करना है, रिवील करना है। तो ज्ञान अर्थात बाहर से जो आ रहा है वो केवल जानकारी है, ज्ञान तो इधर ही है सब कुछ, उसको केवल निकालना है बाहर, मैनिफेस्ट, प्रत्यक्ष करना, रिवील करना, वह है ज्ञान। तो ज्ञान की परिभाषा है अनुभूति। केवल पढ़ना नहीं, केवल रटना नहीं, केवल याद करना नहीं, केवल सुनना नहीं, तीन स्टेजेस है ना उसकी, जानना, मानना और चलना अर्थात स्वरूप बनना, थ्री स्टेजेस है। जानने में तो सब पास है, मानने में सभी पास है, परंतु स्वरूप बनना या चलना उसमें नंबरवार है। तो उस नॉलेज की प्राप्ति से बाबा कह रहे हैं कि अल्पकाल के लिए सफलता तो प्राप्त हो जाती है, तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव भी अभी करना है। ऐसे नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी है, नहीं, संगम युग प्रारब्ध का युग है, अभी 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 प्राप्ति। वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति, अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता का अनुभव होता है। सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हो, तो भट्टी में आए हो चेक करने और कराने के लिए कि कहां तक नॉलेजफुल बने हैं। इसलिए आए हैं यह देखने कि हमने ज्ञान कितना प्राप्त किया है। जो दूसरों को कहते हो तुम कौन हो, अब स्वयं से पूछो मैं कौन हूं। जो दूसरों को कहते हो, जितने प्रश्न हम कोर्स में दूसरों को पूछते हैं वो सारे ही प्रश्न खुद को पूछने हैं। कोई भी पुराने संकल्प और संस्कार दिखाई न दे तो आज के वरदान से ज्ञानी तो आत्मा की पहली निशानी है, अंश मात्र भी कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार न हो, यह है पहली निशानी। तो ज्ञानी तो आत्मा तभी कहा जा सकता है जब पुराना स्वभाव संस्कार कोई भी दिखाई न दे, वो भी अंश मात्र। यह भी अल्पलापन है, बाबा ने कभी मुरली में कहा है। अंत ही तो चल रहा है, वो तो दूसरी बात है। अभी शरीर छोड़ो ना, शरीर छोड़ी हुई अवस्था में ही रहना है कि शरीर छूटा हुआ ही है, शरीर है ही नहीं, अभी ही छूटा हुआ है। तो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात सबसे पहला, कोई भी अंश मात्र भी पुराना स्वभाव संस्कार, कोई भी पुराना नहीं कहा बाबा ने, कोई भी कहा उसमें, कुछ भी हो सकता है, नया अर्थात श्रीमत के विरुद्ध जो है। तो ऐसा कोई संस्कार ना हो, नाम मान शान के मांगता ना हो, क्या क्यों में चिल्लाने और पुकारने वाले ना हो, और चौथा एक ही चेहरा हो, अंदर एक बाहर एक ना हो, मास्क नहीं पहना हो, मुखौटा ना हो, जो है वही, जो है जैसे है वही हो। तो ये चार नहीं होनी चाहिए, और होना क्या चाहिए, ज्ञान में समाये हुए, ज्ञान के सागर में समाये हुए, और तीसरा क्योंकि सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ये भी एक चेकिंग पॉइंट है, क्या मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप हूं। उत्तर मिलेगा नहीं, जब नहीं मिलेगा तो ही फिर पुरुषार्थ करना है कि अब बनना है, फिर इच्छा उत्पन्न होगी। ये उत्तर होना चाहिए कि नहीं है। कोई भी पुराना संकल्प व संस्कार दिखाई न दे, इतना त्याग सीखना है। कल हमने लिस्ट निकाली थी ना, त्याग किन बातों का करना है, तो उसमें ये भी एक पॉइंट थी, पुराने संस्कार स्वभाव व्यर्थ निगेटिव विकार मैपन इच्छाएं नाम मान शान की कामनाएं, ये सारे त्याग। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के कुछ भी दिखाई न दे और स्मृति में न आए, ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है। निरंतर तपस्वी, केवल सुबह 8 बजे तक वाले तपस्वी नहीं, ठीक है ना निखिलेश भाई, या शाम वाले तपस्वी नहीं, एक है सुबह वाले तपस्वी, एक है शाम वाले तपस्वी, दोपहर वाले जो नाइट ड्यूटी वाले होंगे वो दोपहर वाले तपस्वी। अलग अलग कैटेगरीज है तपस्वियों की, जो सुबह तपस्वी है वो दोपहर में नाम मत लेना तपस्या का, बिल्कुल नॉट अलाउड। भोजन के बाद नींद आती है। अलग अलग कैटेगरी है तपस्वी की। सुबह श्रेष्ठ स्थिति है, महान स्थिति। दोपहर में कुछ और है, शाम को कुछ और है। कैसे खंडों में विभाजित हुआ है व्यक्ति। जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुनी चाहे तमोगुनी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो। कुमुद बहन, आपके पुरुषार्थ में जो आत्मा निमित्त बनी हुई है परीक्षा के, जिसने संकल्प ही कर लिया है कि आपको तो मूर्ति बना के छोड़ेंगे, जिन्होंने सारा उत्तरदायित्व, उन्होंने अपने सारा दायित्व अपने कंधों पर ले रखा है कि ऐसी छन्नी लगाएंगे कि दुनिया की सबसे सुंदर मूर्ति बनानी है, मूर्ति ऐसी बनानी है, तो उनके प्रति क्या करना है। हमें कुछ करना ही नहीं है, वही कर रहे हैं। तो आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई आत्माएं, कितना धन्यवाद करना चाहिए उनका। नहीं तो हम संपूर्ण कैसे बनेंगे, हम तो बस अपने ही नशे में रहेंगे कि हम तो है। लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो। हर एक आत्मा के प्रति धन्यवाद देना है, वाह, राम जी की इच्छा से डाकू घसीट कर लेके गए और राम ही की इच्छा से पुलिस पकड़ के लेके गई और राम ही की इच्छा से हवालत में रखे और हुजूर राम ही की इच्छा से अब आपके सामने हूँ और राम ही की इच्छा से मुझे छोड़ दिया गया। अकल्याण कुछ है ही नहीं, कैसे ये दृष्टि हो जाए। जो हो रहा है हर चीज में कल्याण है। ऐसे सर्व आत्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है। तो अब समझा ध्रुव भाई, समझा क्या क्या सीखना है, तपस्या क्या सीखनी है और सेवा भी कहां तक करनी है, इसकी महीनता का अनुभव करना है। हर एक पॉइंट की महीनता का अनुभव, ज्ञान की पॉइंट की महीनता का अनुभव, गुणों की महीनता का अनुभव, ज्ञान के एक एक महावाक्य के महावाक्यों की महीनता का अनुभव। हर पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हो। जैसे अभी सभी के सामने ब्रह्मा कुमार प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, दूर से ही जाने जाते हैं कि यह ब्रह्मा कुमार है। जब अब ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार, महातपस्वी कुमार दिखना चाहिए कमलेश भाई। ऐसा बन कर जाना है। मधुबन की इस भूमि में आए हैं तो यहाँ से कुछ बन कर जाना है। ऐसे ही नहीं कि हम तो बाबा से मिल के आए, चाहे कैसे भी मिले। अव्यक्त तो महावाक्य थे ना अभी अभी 31 मार्च की मुरली में, क्या कहते हैं सब, कहते हैं हम बाबा से मिल के आए चाहे कैसे भी मिल के आए। अब ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार दूर से ही दिखाई दे, ऐसा बनकर जाना है। वह तब होगा जब मनन और मगन दोनों का अनुभव होगा। कल हम एक बहुत सुंदर, परसों पढ़ रहे थे हमारी क्लास में, एक बहुत सुंदर कविता, कितना उसमें नशा है उस कविता में। जो कवि है वो देखो क्या कह रहा है संसार की आत्माओं से। कविता जो लिखी है नीरज, सुना होगा गोपाल दास नीरज। तो कवि कह रहा है, मैं तूफानों में चलने का आदि हूं, मैं तूफानों में चलने का आदि हूं। अभ्यस्त किसमें हूं, तूफानों में चलने का। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मेरी मंजिल को खबरदार अगर आसान किया तो। मैं किस में चलने का आदी हूं? तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, फूल रोकते हैं और चलाता कौन है? कांटे। मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते, सच कहता हूं जब मुश्किलें ना होती, सच कहता हूं जब मुश्किलें ना होती मेरे पग तब चलने में भी शर्माते। मुश्किलें जब नहीं होती है तो शर्म आती है मेरे पैरों को चलने के लिए। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे तुम पथ के कणकण को तूफान करो, मेरे पथ के कणकण को तुम तूफान कर दो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। अंगार अधर पे धर मैं मुस्काया, अंगार अधर पे धर अधरों पर होठों पर धर के मैं मुस्काया। मैं मरघट से जिंदगी बुला के ले आया, शमशान से जिंदगी बुला के ले आया हूँ। आंख मिचोनी खेल चला किस्मत से, सौ बार मृत्यु के गले चूम आया हूँ। है नहीं स्वीकार दया आपकी भी, मुझे आपकी दया स्वीकार नहीं है, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो, मुझ पर कोई एहसान नहीं करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। शर्म के जल से राह सदा सींचती है, गति की मशाल आंधी में ही हंसती है। शोले से ही श्रृंगार पथिक का होता है, मंजिल की मांग लहू से ही सचती है। मंजिल की मांग किससे सचती है? लहू से ही सचती है। पग में गति आती है छाले छिलने से, तुम पग पग पर जल्दी चट्टान धरो। मेरे पग पग पर क्या करो तुम? जल्दी चट्टान धरो। मैं तूफानों में चलने का आदि हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। फूलों से जग आसान नहीं होता, रुकने से पद पग गतिवान नहीं होता। अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, अगर पथ में बाधाएं नहीं है तो प्रगति नहीं हो सकती। है नाश जहां निर्मम वही होता है, मैं बसा सुकून नव स्वर्ग धरा पर जिससे, तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो। मैं तूफानों में चलने का आदि हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं पंथी तूफानों में राह बनाता, मैं पंथी, पंथी अर्थात राही पथिक, तूफानों में राह बनाता, मेरी दुनिया से केवल इतना नाता। वे मुझे रोकते हैं अवरोध बिछाकर, मैं ठोकर उसे लगाकर बढ़ता जाता। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर जिससे, तुम मेरे मनमानस पाषाण करो। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर जिससे, तुम मेरा मनमानस पाषाण करो। पत्थर जैसा मेरा मनमानस करो कि जिससे मैं ठुकरा सकूं। मैं तूफानों में चलने का आदि हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। इसके लिए धन्यवाद उन सबको जो काटे हैं, जो शक्तिशाली बनेंगे ना हम, फिर मजबूत कर रहे हैं। मन मानत मन मानस पाषाण करो। ओम शांति। हाँ।